नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। इस मौके फिनलैंड के राष्ट्रपति अलैक्सेंडर स्टूब ने कहा कि विकासशील और घट विकसित देश विश्व व्यवस्था का भविख निर्धारित करेंगे और भारत इस मुख भूमिका निभाएगा। भारत और फिनलैंड ने अज नवी दिल्ली च वख वख खेत्रां च कई समझौतों पर दस्तखत किए ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अज राज्यसभा चोणां लई अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। कई देशों के शामिल होने पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष होर गंभीर हो गया है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप का दूजा सैमीफाइनल मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम विखे भारत और इंग्लैंड विचकार खेलिया जा रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलैक्सेंडर स्टूब ने कहा है कि विकासशील और घट विकसित देश विश्व व्यवस्था का भविख निर्धारित करेंगे और भारत इस मुख भूमिका निभाएगा। नवी दिल्ली में रायसीना डायलॉग में मुख भाषण देते हुए राष्ट्रपति स्टूब ने आज विश्व राजनीति सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने विश्व व्यवस्था में सुधार लिए ठोस मियारी तजवीजा पेश करने लिए कहा। उन्होंने कहा कि विश्व शक्ति का संतुलन बदल गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पछमी प्रधान दुनिया का युग खत्म हो गया पर पछम इस पूरी तरह समझने कुछ समा लगेगा। उन्होंने कहा कि जेकर देश अंतरराष्ट्रीय नियमों नजरअंदाज करते हैं तो मौजूदा विश्व व्यवस्था ढह ढेरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी विदेश नीति एक विहारक विश्व दृष्टिकोण से आधारित किया है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समागम का उद्घाटन किया। भारत और फिनलैंड ने अज नवी दिल्ली चौगिरदा सहयोग प्रवास और गतिशीलता भाईवाली और स्टैटिस्टिक्स समेत वख वख खेत्रां विच कई समझौतों ते दस्तखत किए ने। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलैक्सेंडर स्टूब नाल कई खेत्रां विच दुवल्ले सहयोग नूं मजबूत करने बारे चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षी मंचां ते सहयोग समेत आपसी हित ते खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दयां ते भी विचारां दा आदान प्रदान किया। अपने सांझे बयान विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया अस्थिरता ते अनिश्चितता दे दौर विचों लंघ रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तो पछमी एशिया तक दुनिया के कई इलाकों में टकराव चल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अजे माहौल में भारत और यूरोप दो प्रमुख कूटनीतिक शक्तियां अपने संबंधों के सुनहरी युग में दाखिल हो रही ने।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
श्री मोदी ने दस्या कि 2026 के शुरू में भारत और यूरोपियन यूनियन विचकार एक इतिहासक मुक्त व्यापार समझौता होया सी। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और फिनलैंड विचकार व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूत करेगा।
2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार है।
इस मौके पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलैक्सेंडर स्टूब ने कहा कि भारत दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्रां विचों ते दुनिया दी सब तो तेजी नाल वध रही अर्थव्यवस्थावां विचों एक है। उन्होंने कहा कि यूरोपीयन यूनियन ते भारत विचकार व्यापार समझौता ते रणनीतिक भाईवाली बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चोणां लई अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। नामजदगी प्रक्रिया दौरान गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रधान नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ते होर सीनियर आगू मौजूद सन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अज सवेरे राज्यसभा चोणां लड़न दे अपने इरादे दा ऐलान कीता सी। उन्हां कहा कि बिहार विधानसभा ते लोकसभा दे दोवें सदनां दे मैंबर वजों सेवा निभाउण तों बाद उह राज्यसभा दे मैंबर बनण दी वी इच्छा रखदे ने। उन्हां बिहार दे लोकां नूं भरोसा दित्ता कि भविख विच वी राज नाल संबंध जारी रखणगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उह बिहार दी नवीं सरकार नूं पूरा समर्थन ते मार्गदर्शन प्रदान करनगे। इस दौरान बीजेपी प्रधान नितिन नवीन और पार्टी के सूबा जनरल सकत्तर शिवेश कुमार ने भी राज्यसभा चोणां लई अपने नामजदगी कागज दाखिल किए ने। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया ने अज हरियाणा तो राज्यसभा चोणां लई अपनी नामजदगी दाखिल की। इस मौके हरियाणा के मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद सन। पानीपत के वसनीक संजय पाटिया नूं संगठनात्मक राजनीति का लंबा तजर्बा है। कांग्रेस के करमवीर सिंह बोध नूं अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी अज विधानसभा भवन विच अपनी नामजदगी दाखिल की। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। कई देशों के शामिल होने नाल पछमी एशिया विच चल रहा टकराव तेजी नाल वधिया है। अमरीका ते इसराइल ईरान उपर हवाई हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान मिसाइलों ते ड्रोनों नाल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित हथियारबंद तड़ा हिजबुल्ला भी हमलों विच ईरान नाल हमलों में शामिल हो गया है। इसनों खेतरी स्थिरता ते विश्व सुरक्षा लिए खतरा दसदियां कई देश चिंता प्रगट कर रहे हैं ते उन्हां स्थिति नूं शांत करन दी अपील कीती है। ताज़ा खबर अनुसार अजरबाईजान ने अज ईरान उपर अपने नकचीवान इलाके च ड्रोन हमले का इल्जाम लाया। अजरबाईजान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक ड्रोन नकचीवान हवाई अड्डे नेड़े ते दूजा एक स्कूल नेड़े डिग्गया, जिस विच दो नागरिक जख्मी हो गए। कतर ने भी ईरान ते मिसाइल हमले का इल्जाम लाया है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन तबाह कर दिते ने। संयुक्त अरब अमीरात ने भी दावा किया है कि उसकी हवाई रक्षा प्रणाली ने बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिता है। अज सवेरे ईरान ने इजरायली ते अमरीकी टिकाणे ते नवे हमले किए। ईरान ने कहा है कि अमरीका नूं हिंद महासागर विच एक ईरानी जंगी जहाज नूं तबाह करन दा पछतावा होएगा। अमरीकी समुद्री फौज ने मंगलवार रात नूं हिंद महासागर विच ईरानी जंगी जहाज आयरिस तेना ते हमला कीता, जिस विच 87 ईरानी नाविक मारे गए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज दोपहर बाद ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराग़ची नाल गलबात की। विदेश मंत्री ने अज ओमानी विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद बिन हमूद ते अल बसैदी नाल भी पछमी एशिया विच चल रहे संघर्ष बारे गलबात की है। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने अज भारत सरकार वालों दिल्ली स्थित ईरानी दूतकार विखे सोग पुस्तक ते दस्तखत किए। श्री मिसरी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत ते सोग प्रगट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल गलबात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पछमी एशिया विच विकसित हो रही हालत ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦਮੇ ਚ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਧਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ICC 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਓਵਰਾਂ ਵਿਚ 92 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਤਵਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਫਾਈਨਲ ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਇਸੇਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਸਟੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ICC 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।